आज है 1 सितंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए लाए नई योजना। गोवा में आरएसएस प्रमुख को पद से हटाए जाने के बाद मचा हड़कंप। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की जियो 4G की शुरुआत और एक कथित सीडी के बाद आपने संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से हटाया।
ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध आप्रवासन को रोकने के मकसद से एक सख्त योजना बनाई है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो से मुलाकात कर लौटे ट्रंप ने एरिजोना में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवासियों को रोकने के लिए अमरीका मैक्सिको के बीच जो दीवार बनाई जाएगी उसका खर्च मैक्सिको को भी देना होगा। ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद वो करीब 20 लाख अवैध प्रवासियों को अमरीका से वापस भेजेंगे। हालांकि मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो का कहना है कि वार्ता के दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि मेक्सिको दीवार बनाने का कोई खर्च नहीं देगा। जर्मनी के बावरिया राज्य में आज से एक नया कानून लागू हो गया है जो अधिकारियों को ये अधिकार देगा कि वे नए शरणार्थियों को बता सकेंगे कि उन्हें कहाँ रहना है। सरकार पर सुविधाओं और घर के लिए आश्रित सभी शरणार्थियों को एक शहर या गाँव आवंटित किया जाएगा जहाँ उन्हें 3 सालों तक रहना होगा। शरणार्थियों की मदद करने के लिए तैयार किए गए नए कानूनों में से ये एक कानून है जिससे वो जर्मनी के समाज में घुल मिल सकेंगे। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर दिए बयान पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। अब वे निचली अदालत में मुकदमा का सामना करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से राहुल गांधी को छूट देने से इनकार कर दिया है, यानी 16 नवंबर को उन्हें भिवंडी की कोर्ट में पेश होना होगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
श्री राहुल गांधी जी की ओर से 4 बड़ी स्पष्ट बातें सुप्रीम कोर्ट को कही, मैं फिर दोहराता हूं उन्हें। श्री राहुल गांधी जी के वकील ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयान पर कल भी कायम थे, आज भी अडिग हैं और कल भी अडिग रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा।
रणदीप सिंह सुरजेवाला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब में इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने अपने 1 लाख इमामों और प्रचारकों को निर्देश दिया है कि वे अपने उपदेशों में राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दों से बचें और केवल धार्मिक मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करें। निर्देश में खास तौर पर कहा गया है कि नमाज के दौरान किसी शख्सियत या किसी देश को ना कोसें। खबरों के मुताबिक अमरीका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर में एक रॉकेट में प्रक्षेपण के दौरान विस्फोट हो गया। केप कैनावेरल परिसर में एरोस्पेस कंपनी के स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक रॉकेट में धमाका हुआ है जब उसे अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। इस धमाके में किसी के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और अभी अभी ये खबर आ रही है कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कैनेडी स्पेस सेंटर में धमाका हुआ है। धमाका लॉन्च पैड पर हुआ जहां स्पेसएक्स कंपनी एक रॉकेट लॉन्च करने जा रही थी। इस पर और जानकारी के लिए चलेंगे वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। लेकिन पहले अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। उन्होंने अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए एक योजना लेकर आने की बात कही है। मेक्सिको के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ट्रंप ने एरिजोना राज्य में हुई एक रैली में कहा कि प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका की सीमा से लगी जो दीवार बनेगी उसका खर्च उठाने के लिए मेक्सिको पर दबाव डाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति बनते ही वे अवैध रूप से आए प्रवासियों को वापस भेज देंगे। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
Are you ready? मेक्सिको के दौरे से लौटने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के सबसे अहम वादे को कायम रखा। उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमरीका और मेक्सिको के बीच दीवार जरूर बनवाएंगे और इसका पूरा खर्च मेक्सिको ही देगा।
हम दक्षिण सीमा पर एक महान दीवार बनाएंगे और मेक्सिको उसका 100% खर्चा देगा। ये बात अभी उन्हें पता नहीं है, वो महान लोग हैं पर वो खर्च तो देंगे ही। मौजूदा सबसे आधुनिक तकनीक से हम उस दीवार की निगरानी करेंगे, मेक्सिको भी हमारा साथ देगा।
अमरीकी राज्य एरिजोना के फीनिक्स शहर में अपने हजारों समर्थकों के सामने भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई लोगों के नाम लिए जिन्हें गैर कानूनी प्रवासियों ने मारा था। ऐसे कुछ मृतकों के रिश्तेदार भी वहीं मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद सभी गैर कानूनी प्रवासियों को देश से निकालने के लिए कदम उठाएंगे। उनके मुताबिक कौन अमरीका में आ सकता है और कौन नहीं, ये फैसला अमरीकियों के पास ही होना चाहिए। 10 अंकों का एक ढांचा बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में गैर कानूनी प्रवासियों को कोई माफी नहीं मिलेगी।
We will break the cycle of amnesty and illegal immigration.
हमें ये चक्र तोड़ना है। गैर कानूनी ढंग से रहने वाले प्रवासियों को यही बसने की इजाजत देना और इन्हें माफी मिलना, हम इसे जरूर रोकेंगे। हमारा सिर्फ यही संदेश है, गैर कानूनी ढंग से हमारे देश में आने वाले यहाँ के नागरिक कभी नहीं बन सकते।
डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। गौरतलब है कि हाल में मेक्सिको के दौरे से अमरीका लौटे ट्रंप ने वहां मेक्सिको के लोगों को हैरान करने वाले और कमाल के लोग बताया था। हालांकि इससे पहले अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेक्सिको से अमेरिका आने वालों को हत्यारे और बलात्कारी कह चुके हैं। ट्रंप के समर्थक उनकी बातों से सहमत और खुश नजर आए।
उन्होंने कई सकारात्मक बातें कही, पर जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि गैर कानूनी रूप से यहां आए लोगों को वापस भेजा जाएगा।
सिर्फ वही एक अकेले है जिन्हें अमरीका की चिंता है। वो परेशानियों को दूर करने में सक्षम है। वो दीवार बनवाएंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। वो चरमपंथियों और गैर कानूनी ढंग से आए लोगों को देश से निकाल देंगे।
वहीं इन सभी दावों से विपरीत मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पीन्या नीटो ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि उन्होंने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि मेक्सिको दीवार का खर्च नहीं देगा। वहीं मेक्सिको में विपक्षी दल PRD के सांसद ऑगस्टीन बास्टाव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मेक्सिको बुलाना गलत था।
राष्ट्रपति ने ट्रंप को हमारे देश के और सभी नागरिकों की बेइज्जती करने के लिए बुलाया था और वापस जाके ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति और नागरिकों का मजाक उड़ाया। ट्रंप अब भी बोल रहे हैं कि वो दीवार बनाएंगे और मेक्सिको को ही उसके लिए खर्चा देना होगा।
मेक्सिको में विपक्षी दल के सांसद ऑगस्टीन बास्टाव के शब्द। जैसा कि अमरीका में कई जगहों में देखा गया है, ट्रंप के दौरे से मेक्सिको में भी लोगों में विरोध और गुस्सा देखा गया। ट्रंप का ये भी कहना है कि एक नई प्रवासी नीति के मुताबिक जो लोग अमरीका में रहना चाहेंगे उनसे जांच के तहत अमरीका में आने से पहले ऑनर किलिंग, औरतों की इज्जत, समलैंगिकों, अल्पसंख्यकों और इस्लामी चरमपंथ पर गंभीर सवाल पूछे जाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वे राष्ट्रपति बनते ही अवैध रूप से आए प्रवासियों को वापस भेज देंगे। ये थे वैभव श्रीवास्तव।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब रुख करते हैं भारत का। गोवा में सुभाष वेलिंगकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद राज्य में 400 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने इसके विरोध में संघ से इस्तीफा दे दिया था। आज सुभाष वेलिंगकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो गोवा को RSS का प्रांत बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें प्रमुख चुना गया है और ये 400 स्वयंसेवक भी इसका हिस्सा होंगे। साथ ही सुभाष वेलिंगकर का कहना था कि वे भारतीय भाषा सुरक्षा मंच का आने वाले चुनाव में समर्थन करेंगे। मैंने पणजी में फोन कर स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभु देसाई से पूछा कि संवाददाता सम्मेलन में वेलिंगकर ने और क्या क्या कहा।
गोवा जो राज्य है वो पहले RSS का एक विभाग था और महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग दो डिस्ट्रिक्ट्स और गोवा राज्य बोल के गोवा यानी कोंकण प्रांत था उसका वो भाग था और उसमें से एक विभाग था गोवा का जिसके सुभाष वेलिंगकर संघ चालक थे जो राज्य प्रमुख थे। उस पद से उन्हें RSS नागपुर से हटाया गया और वो हटाने के बाद पूरे 400 स्वयंसेवक जो है अलग अलग पद पे जो थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे जो थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात हुई कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, सुभाष वेलिंगकर ने डिक्लेयर कर दिया कि हम वो जो कोंकण प्रांत है वो कोंकण प्रांत से हट रहे हैं और हम गोवा का अलग प्रांत बना रहे हैं जो आरएसएस का प्रांत रहेगा और वो आरएसएस के प्रांत के पद के ऊपर गोवा प्रांत के प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को चुना दिया है। और सुभाष वेलिंगकर ने बताया है कि पूरे जो आरएसएस स्वयंसेवक जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो सब वो प्रांत के भाग बन गए हैं और वो नागपुर को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, सिर्फ इलेक्शन होने के बाद। तब तक ये जो है भारतीय भाषा सुरक्षा मंच की जो अलग पार्टी बन रही है उसको सुभाष वेलिंगकर ने सपोर्ट किया था इसलिए उन्हें हटाया गया था। तो अभी सुभाष वेलिंगकर बोल रहे हैं कि हम उसको पूरा समर्थन देंगे उस पार्टी को और उस पार्टी को जीता के भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे।
जी, सुभाष वेलिंगकर का कहना है कि वो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच को समर्थन देंगे। अगले साल गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या कहा जाए कि एक बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है?
हाँ, एक तो है कि जो पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे वो तो भाजपा को ही समर्थन देते रहे हैं। सुभाष वेलिंगकर ने आज बता दिया कि गोवा में उनके 10,000 स्वयंसेवक हैं, 1.5 लाख फैमिलीज हैं और 1.5 लाख फैमिली से टोटल 3 लाख लोग जो है वो वहाँ यहाँ के स्वयंसेवक जो है वोटर्स हैं। गोवा में पूरे वोटर्स जो है सिर्फ 10 लाख हैं, उस 10 लाख से 3 लाख वो बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के समर्थक हैं और वे पूरे समर्थक ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो ये तो 30% हो गया, 30%। तो 30% लोग भारतीय जनता पार्टी से हट गए तो भारतीय जनता पार्टी की क्या परिस्थिति हो सकती है ये तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल जो वोटिंग है वो वोटिंग घट जाएगी। वो कितने हद तक घट जाएगी ये तो अभी जब इलेक्शन आएगी तभी देखना पड़ेगा।
आरएसएस के इस फैसले का पड़ सकता है आगामी विधानसभा चुनाव पर असर। ये थे पणजी से संदेश प्रभु देसाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने मुंबई में आज जियो 4G की शुरुआत करते हुए कहा कि इस पर सभी कॉल मुफ्त होंगी। उनका कहना था कि जियो 4G की सेवाएं आम लोगों के लिए 5 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। मुकेश अंबानी का कहना था कि जियो 4G पर 1 GB डेटा की कीमत 50 रुपये होगी। इस घोषणा के बाद एक तरह से बाजार में खलबली मच गई है। हमारे साथ लाइव स्टूडियो में है विनीत खरे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो दे रहे हैं ऑफर।
आज जो घोषणाएं की गई हैं सुशीला, उसका बाजार को लंबे समय से इंतज़ार था। जैसा कि आपने कहा, रिलायंस की बैठक थी आज, वार्षिक AGM, वार्षिक आम बैठक, जहां पर कंपनी प्रमुख मुकेश अंबानी ने रिलायंस 4G नेटवर्क की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की।
नो जियो कस्टमर विल एवर पे फॉर वॉइस कॉल्स अगेन अक्रॉस इंडिया टू एनी नेटवर्क। And in the spirit,
मुकेश अंबानी कह रहे थे कि कोई भी रिलायंस जियो उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में किसी दूसरे मोबाइल नेटवर्क पर की गई वॉइस कॉल्स के लिए पैसे नहीं देगा। आज की गई घोषणा के मुताबिक रिलायंस जियो पर भारत के भीतर रोमिंग मुफ्त होगी। कंपनी नेटवर्क पर 1 GB डेटा का दाम मात्र 50 रुपये होगा, यानी बाजार के दाम से 5 गुना सस्ता। दिवाली जैसे दिनों पर भी कंपनी मुफ्त SMS सुविधा उपलब्ध करवाएगी। 16 कंपनियों के हैंडसेट में से आप अपना मनपसंद मोबाइल चुन सकते हैं। अगले हफ्ते से लोगों को यह सर्विस 3 महीने के लिए मुफ्त मिलेगी, साथ में रिलायंस जियो का सिम और उसकी कई सर्विसें भी फ्री। तो रिलायंस जियो 4G से उपभोक्ताओं को और क्या क्या फायदे होंगे, बता रहे हैं तकनीक मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा।
जब भी हम जाते हैं मोबाइल फोन के लिए एक सिम कार्ड खरीदने, तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई हमें कॉल करने में प्रति मिनट पैसा कितना लगेगा। उस बहस को रिलायंस ने आज खत्म कर दिया है। अब आपको ये नहीं देखना हो कि कितने पैसे लगेंगे आपको एक कॉल करने में, क्योंकि कॉल आपके लिए हमेशा फ्री है। तो स्मार्टफोन सस्ता हो रहा है, भारतीय भाषाओं में अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है और डेटा सस्ता हो रहा है। आप इस पे तरह तरह के वीडियो देख सकते हैं, या तो आप इंटरनेट के जरिए या फिर टेलीविजन देखना चाहते हैं, उन सब को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
और आने वाले दिनों में दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए क्या चुनौतियां पेश होंगी, आशुतोष सिन्हा?
ये 4G नेटवर्क है, ये थोड़ा अलग तरह का नेटवर्क होता है 2G के नेटवर्क के मुकाबले। और इसको हम जिसको टेलीकॉम में कहते हैं, ये पैकेट स्विच नेटवर्क है, जो पहले सर्किट स्विच्ड नेटवर्क कहलाता था वो नहीं है। ये एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है अब के नेटवर्क में और पहले के नेटवर्क में। इसीलिए इतना आसान नहीं होगा कोई जो भी पुराने डिजाइन किए हुए नेटवर्क है उनको रिलायंस से कम्पीट करना और वो स्पीड देना बहुत आसान नहीं होगा जब तक वो अपने नेटवर्क में काफी खर्च नहीं करते हैं।
ये तो थी सुविधाओं की बात, लेकिन कई उपभोक्ता भारत में आज भी खराब 3G सुविधाओं का शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतों से रिलायंस जियो कैसे निपटेगा, बता रहे हैं एक बार फिर।
कह तो ये रही है कि वो हजारों शहरों में है, लेकिन ये तो अब नेटवर्क का एक्सपीरियंस देख कर ही पता कर सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, TRAI भी उससे नाखुश है और कई बार उन्होंने कहा है ये बात। और उसके कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड हैं सेट, जो कि एक नेटवर्क लेवल पे चेक किया जाता है और उन्हें TRAI को रिपोर्ट भी करना होता है।
ये थे आशुतोष सिन्हा। तो अब देखना होगा सुशीला कि रिलायंस की जो प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं वो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या करती हैं।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की जियो 4G की शुरुआत, इस विस्तृत जानकारी के लिए विनीत खरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कथित CD के TV चैनलों पर दिखाए जाने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से हटा दिया है। CD में कथित मंत्री को किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में खासा भूचाल सा आ गया है। हालांकि संदीप कुमार ने CD को फर्जी बताया है। पिछले साल संदीप कुमार ने सबको तब हैरत में डाल दिया था जब उन्होंने कहा था कि वे हर रोज अपनी पत्नी का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
इस मामले को लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर वाक्य युद्ध चलता रहा। कुछ का कहना है कि दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार का निकाला जाना बिना जुर्म की सजा जैसा है, जबकि कुछ और लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना पहले से रिकॉर्ड किया गया बयान जारी किया और कहा,
आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, हम भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। आज अगर मैं अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, तो ये आपको यकीन है कि अगर दूसरा कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरी पार्टी वाले अपनों को बचाते हैं तो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की उनकी हिम्मत नहीं है। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है।
वहीं BBC से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया इकाई को देखने वाले अंकित लाल का कहना था कि मंत्री को इसलिए हटाया गया है ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके।
हम ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी एक चीज आई हमारे पास, हमें लग रहा है कि ये गलत, हमने उसको मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया सो दैट ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन इन एनी मैनर पॉसिबल। उसके बाद द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अगर उसने उसके किसी चीज के फेवर में ये किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी, या फिर अगर कोई व्यक्ति उसका FIR करता है तो उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी।
मामला कथित तौर पर सेक्स स्कैंडल से जुड़ा बताया जाता है, मगर सोशल मीडिया पर लोगों में इसको लेकर बहस छिड़ी रही। कुछ का कहना है कि अनैतिकता और अपराध में फर्क होता है। पत्रकार सबा नकवी ने सवाल किया,
मुझे तो बहुत अजीब सा केस लग रहा है। चीफ मिनिस्टर की राइट है कि वो किसी को भी ना रखे अपने कैबिनेट में, लेकिन ये जो इशू एकदम से।
मगर लेखक और पत्रकार शिवम विज पूछते हैं कि इस कथित सेक्स स्कैंडल को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है जबकि किसी ने कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई है।
सो रिडिकुलस कि किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया कोई इलीगैलिटी का। Not EVP News, not Kejriwal while backing him, not Manish Sisodia in his statement to the press. This is one case. यहाँ तो आपने आधे घंटे में ट्विटर में को नौकरी से निकाल दिया, वो TV चैनल ने घंटों चलाया स्टोरी, लेकिन पूरे शाम में कल किसी ने ये नहीं बताया कि क्राइम क्या था, अनड्यू फेवर थे, कोई रेप का चार्ज था, या ऐसा बोला कि भाई मेरे साथ सेक्स करो तो नौकरी दे दूंगा मैं दिल्ली सरकार में, या प्रोस्टिट्यूशन था, मतलब रिमोटली कोई चार्ज नहीं लगाया है।
हालांकि संदीप कुमार ने CD को फर्जी बताया और कहा कि ये सब कुछ उनके खिलाफ एक सोची समझी साजिश है।
आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है, ये मुझे फंसाया गया है।
वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुल्तानपुर माजरा से विधायक संदीप कुमार ने सबको तब अचंभे में डाल दिया जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी पत्नी के हर रोज सुबह पैर छूकर निकलते हैं। संदीप कुमार आम आदमी पार्टी के तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया हो। इससे पहले असीम खान और जितेंद्र तोमर को भी मंत्रिमंडल से हटाया जा चुका है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज व मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं दिनभर सुशीला सिंह के साथ और सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास, जहां के फ्लोरिडा राज्य के कैनेडी स्पेस सेंटर में धमाका हो गया और धमाका लॉन्च पैड पर हुआ जब स्पेस एक्स कंपनी एक रॉकेट लॉन्च करने जा रही थी। ब्रजेश, क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास?
जी, जैसा कि आपने कहा सुशीला, कुछ ही देर पहले ये घटना हुई है, इसलिए बहुत कम जानकारी अभी भी मिल पाई है। जो हमें पता चला है कि कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा का, कि जिसके लॉन्च पैड पर यह धमाका हुआ, जहां पर एक निजी एरोस्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, वो अपने रॉकेट को तैयार कर रही थी, जिस फाल्कन 9 नाम के रॉकेट को, क्योंकि शनिवार को वहां से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना है, और धमाका उसी जगह पर हुआ है। ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो रॉकेट था स्पेस एक्स का, उसे कोई नुकसान हुआ है या उस सैटेलाइट को नुकसान हुआ है या नहीं। जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, काफी धुएं के बादल वहां पर छाए हुए हैं, लेकिन स्थानीय काउंटी जो है वहां पर, जो वहां का प्रशासन है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है कि फिलहाल स्थानीय लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है इस धमाके से। और जो स्पेस एक्स कंपनी है वो एक निजी कंपनी है जिसने काफी समय से उस तरह की टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रही है कि जो स्पेस में जो सामान भेजे जाते हैं, खासकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उनका जो खर्च है उसे काफी कम किया जा सके। और उन्होंने जो दो रॉकेट्स बनाए हैं, फाल्कन 1 और फाल्कन 9, ये दोनों दोबारा से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अनमैन्ड है, इनमें किसी चालक की जरूरत नहीं थी। और उस वक्त भी जब ये ट्रायल चल रहा था, जब टेस्ट हो रहा था, तो वो अनमैन्ड ही था रॉकेट। लेकिन फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी मिल पाई है। ये जब धमाका हुआ, आसपास कई मील तक लोगों के जो मकान थे, जैसे भूकंप आने के समय में जो कंपन होता है, उस तरह का उन्हें महसूस हुआ। ये ट्विटर पर उनकी तरफ से इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि रॉकेट को और सैटेलाइट को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, क्योंकि शनिवार की सुबह ही उसे लॉन्च होना था और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और एक जगह जो अमेरिकी मीडिया के अनुसार इस सैटेलाइट से आने वाले दिनों में फेसबुक भी कुछ दुनिया के ऐसे इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जहां इंटरनेट नहीं है, और ये एक इसराइली कंपनी का सैटेलाइट था जिसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी।
जी, तो फ्लोरिडा राज्य के कैनेडी स्पेस सेंटर में धमाका हुआ। अभी तक जो जानकारी खबरें मिल रही है कि स्थानीय लोगों को कोई खतरा नहीं है। ये थे वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपकी चिट्ठियां।
आपकी राय। स्वीकार कीजिए नमस्कार, मेरा मैं हूँ वंदना और मेरे साथ हैं,
मैं हूँ स्वाति।
स्वाति, चिट्ठियाँ भी हैं और
पोस्टकार्ड
भी हैं, तो कहाँ से शुरुआत करेंगी?
मैं सोच रही हूँ आज ईमेल से ही शुरुआत कर लूँ। दो ईमेल जो एक तरह की ही बात कह रहे हैं, उनमें मंजुल कुमार का है फतेहपुर दीदारगंज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इन्होंने कहा है कि इन्हें प्रगति सक्सेना और निखिल रंजन की आवाज़ें बहुत पसंद हैं, रेहान साहब का अंदाज इन्हें बहुत पसंद है, लेकिन शिकायत यह है कि संडे दिन भर में आप केवल बॉलीवुड हस्तियों को तवज्जो क्यों देते हैं? क्या समाज में नेता, छात्र, वैज्ञानिक, पत्रकार आदि का अकाल है? और वरना इसी से मिलता जुलता एक और खत ज्योतिर्मय एस दासम का, गांव खरबला, जिला हिसार, हरियाणा से। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि पिछले महीने इनका पत्र शामिल हुआ तो इन्हें लगा कि इनकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा नहीं है।
नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है।
और कह रहे हैं कि बीबीसी से शिकायत ये है कि जब संजीव श्रीवास्तव हर रविवार किसी हस्ती का इंटरव्यू करते थे तो अलग अलग क्षेत्रों की बहुत बड़ी और महान हस्तियों के साक्षात्कार सुनने को मिलते थे, जो अब नहीं मिल रहे हैं।
सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योतिर्मय साहब और मंजुल कुमार के
आप दोनों ने समय निकाला और चिट्ठी हमें लिखी। ये बात कुछ हद तक वाजिब है कि जो संडे दिन भर कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सारे जो लोग शामिल रहते हैं वो फिल्मी हस्तियां रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने जिक्र किया पत्रकार, वकील, नेता, तो ऐसे कई हस्तियां हैं जो हम सुनवाते रहते हैं। हालिया दिनों में आपको याद होगा महाश्वेता देवी पर जो विशेष इंटरव्यू था, बहुत पुराना एक, वो सुनवाया था। फिर जो अभी उभरते हुए दलित नेता हैं मेवाणी, उनका भी सुनवाया था। तो आपका सुझाव बिल्कुल सराखों पर, कोशिश करेंगे कि इस तरह से जो गैर फिल्मी हस्तियां हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा शामिल करें।
और संडे दिन भर की बात चली रही है तो आशुतोष कुमार पांडे का पोस्टकार्ड हमें मिला है, बक्सर बिहार से लगातार हमें लिखते हैं, और इन्होंने अभय देओल के साथ जो बातचीत थी,
आप ही ने की थी?
मैंने की थी, और उसकी इन्होंने तारीफ की, क्योंकि पहला सवाल जो था उनसे वो ये था कि उनकी जो फिल्म आई है हैप्पी भाग जाएगी वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती है अपनी फिल्म में, जो अभिनेता है वो किस तरह से भारत पाक संबंधों को देखते हैं, वो सवाल इन्हें काफी पसंद आया। उसके अलावा इन्होंने समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्टिंग जो थी बाढ़ से संबंधित, उसकी काफी तारीफ की है। कह रहे हैं कि जहां लोग दफ्तर में बैठे बैठे खबर बना देते हैं वहां समीर गए जगह जगह पर, ये उनके लिए खास रहा। लेकिन शिकायत है कि बिहार के बक्सर भोजपुर में बीबीसी का कोई भी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, जबकि ये इलाका है जहाँ फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
वाकई ये बात सही है कि जो बाढ़ आई है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में भी, और समीर कई जगहों पर गए, काफ़ी बुरा हाल था, एक तरह से उन्होंने हाल बयां करने की कोशिश की। और जहां तक ये बात कर रहे हैं बिहार की, तो अगर इन्होंने कार्यक्रम लगातार सुने होंगे तो इन्होंने देखा होगा कि जो भागलपुर की तरफ से जो इलाका है, जो गाँव है, उसमें रवि प्रकाश बहुत मुश्किल हालात में गए और उन्होंने कई सारी रिपोर्टें वहाँ से दी हैं, तो शायद हो सकता है इनसे वो कार्यक्रम ये न सुन पाए हों।
एक और ईमेल है शंभु शरण का, और इनका कहना यह है कि इन्होंने बिलासपुर से ये ईमेल लिखा है। इनका कहना यह है कि इन्हें बीबीसी हिंदी के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, विवेचना, दुनिया जहान, इंडिया बोल, सब इनको बहुत ही सामयिक और प्रेरणादायी लगता है। लेकिन कहना इनका यह है कि आप फेसबुक के जरिए लोगों से राय मांगते हैं इंडिया बोल में, लेकिन कई बार ये राय कार्यक्रम में शामिल नहीं होती है, तो अगर हो सके तो इसका ज़रूर ध्यान रखें।
जी, पहले तो शुक्रिया, आप लगातार कार्यक्रम सुनते हैं और आपने ईमेल भी लिखा। और जहाँ तक बात रही राय मांगने की, तो वाकई अगर हम काफ़ी बार कहते हैं लोगों से कि अपनी राय रखें, और कोशिश करेंगे कि जब लोगों की बात सुनते हैं फ़ोन पे, तो कुछ जो कमेंट्स हैं, कुछ राय जो हैं, वो फेसबुक से भी ली जाए, आगे से ज़रूर ध्यान रखेंगे।
जी, राजा बाबू का ईमेल है खगड़िया से, लिख रहे हैं कि प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र की बेटी से जो बातचीत सुनवाई गई वो इन्हें बहुत अच्छी लगी, और बहुत बहुत बधाई भेज रहे हैं। लेकिन वंदना जी, इसी से संबंधित एक और ईमेल है, आशीष पांडे ने लखनऊ से भेजा है, और ये कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम इन्होंने सुना उस दिन, उसमें इन्हें काफी सारी गलतियां सुनाई
दी, उच्चारण की
गलतियां। कह रहे हैं कि सुनना तो अच्छा लगा, पर बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार, कई बार उन्होंने शैलेंद्र का उच्चारण शैलेंद्र किया है, और भी जगहों पर श का उच्चारण स हुआ है।
जी बिल्कुल, ये बातचीत हाल के दिनों में ही सुनवाई गई थी, शैलेंद्र जी के जन्मदिवस था उस दिन और उनकी बेटी से बातचीत हुई थी, तो राजा बाबू साहब हैं उनको ये पसंद आई। और साथ ही जाहिर है एक छोटी सी आलोचना भी है, और उनका एक तरह से पहला प्रयास है, प्रदीप नया नया वो रेडियो की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके जो सुझाव हैं, आलोचना है, ज़रूर उन तक पहुँचाएंगे ताकि दोबारा ये शिकायत ना हो आपको। तो स्वाति, एक पोस्ट कार्ड ले जाते जाते
जरूर मैं बता दूं, फारूक अब्दुल्ला फिजा का लक्ष्मीपुर रक्सौल से हमेशा वो हमें लिखते हैं। उनका खत है, उन्होंने प्रतीक्षा घिल्दियाल की रिपोर्ट की तारीफ की है। और इसके अलावा एक और चिट्ठी मेरे हाथ में है, ये रायपुर किशनगंज बिहार से उमा शंकर दास की है, और इन्होंने रिहान फजल साहब ने जो देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए विवेचना की शुरुआत की, वो इनको बहुत पसंद आया। इनका कहना है कि इससे पहले किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनवाई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, और अब समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे वंदना और स्वाति बख्शी, और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका मेक्सिको के बीच जो दीवार बनाई जाएगी उसका खर्च मेक्सिको को भी देना होगा। जर्मनी के बवेरिया राज्य में आज से एक नया कानून लागू हो गया है जो अधिकारियों को ये अधिकार देगा कि वे नए शरणार्थियों को बता सकेंगे कि उन्हें कहाँ रहना है। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए बयान पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमर शर्मा। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।